یہ وائس آف امریکہ ہے. پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے پاکستان میں مہنگائی اور عوام کی تنخواہوں میں اضافہ کب ہوگا. پارلیمنٹیرینز نے اگرچہ اپنی تنخواہوں کا بل پیش کیا جو منظور نہ ہو سکا, اور یہ کہ اسی سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر کیوں نہیں چل پا رہی. جو ہمارے ریڈیو سیگمنٹس ہیں اس میں ہم بات کریں گے کہ آن لائن ٹیلی ویژن چینلز ہوں یا ڈیجیٹل میڈیا ہوں, اس سے حکومت یا ادارے کیوں کر خوف زدہ ہیں. اور ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں سندھ کے بعد پنجاب میں بھی ٹڈی دل کا حملہ. اس موضوع پہ گفتگو ہوگی کہ جو فارمرز ہیں وہ اپنے آپ کو اور اپنی فصلوں کو کس طرح سے اس سے بچا سکتے ہیں. اور آج کے دیگر جو پروگرام ہیں موضوعات ہیں اس میں ہم بات کریں گے. ساتھ ساتھ یہاں پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جن کو مواخذے کا سامنا ہے, لیکن اس سے پہلے وہ اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کرنے جا رہے ہیں. کرونا وائرس پہ بھی اپڈیٹس اور ایک اسپیشل انٹرویو پاکستان کے پرائم منسٹر, ان کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ پروگرام سامعین نام آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اردو voa.com یعنی ہماری ویب سائٹ پہ براہ راست سٹریم ہوتا ہوا سن سکتے ہیں. ریڈیو 972 کلو ہرٹز میڈیم ویوز کے اوپر آپ اس پروگرام کو سن رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے اس میں facebook.com/urduvoa یعنی یہ وائس آف امریکہ کے اردو کا جو فیس بک پیج ہے اس کے اوپر بھی آپ ہمیں براہ راست دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. کچھ تھوڑی سی فیڈ بیک شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ہوپفلی جوائن کریں گے سینیٹر شبلی فراز, اور ان سے ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر, اور ان سے ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں مہنگائی, بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ریشو کے اوپر حکومت کے پاس کیا لائحہ عمل ہے. لوگ خاصا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں حکومت کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی ہیں حکومت کے وہ بھی اسی بات پہ حکومت سے نالاں نظر آتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں, اور اگر میں چاند ایک کمنٹس جو ہیں وہ اگر شامل کر سکوں اور چاہیں کہ ہم ان کی رائے بھی اس پروگرام میں لیں, اور ہمارے جو پینلسٹ ہیں ہمارے جو مہمان ہیں ہوپ فلی وہ کچھ لمحوں بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر شبلی فراز, تو ان سے ہم بات کریں گے. پاکستان میں جنوری کے اختتام پر مہنگائی کی شرح میں 2% اضافے کے ساتھ بتایا یہ جاتا ہے کہ مجموعی طور پہ 14% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے, اور پچھلے 10 یا 12 سال کے عرصے میں یہ بلند ترین شرح ہے مہنگائی کی. حکومت کے اوپر اس کی وجہ سے خاصی تنقید ہو رہی ہے. جب کیمراز مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں تو تاجر جو ہیں وہ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہی ہیں, عام آدمی اپنی پریشانی کا اظہار کر رہا ہے, اور اخباری اطلاعات جو آ رہی ہیں, یہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ حکومت کے اپنے اتحادی اور حکومت کے اپنے جو لوگ ہیں وہ بھی نالا نظر آتے ہیں کہ اپنی کانسٹیچوئنسیز میں لوگوں کو کس طرح سے فیس کیا جائے. اگرچہ یہ بتایا جاتا ہے اعداد و شمار کے حساب سے کہ 12 سال پہلے یا 10 سال پہلے 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس میں 17% سے زیادہ, بعض رپورٹس کے مطابق 23% تک مہنگائی ہوئی تھی, اور حکومت اس میں اپنا نقطہ نظر یہ دیتی ہے کہ جو قرضے میچور ہو چکے تھے پچھلے دور حکومت میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی تو اس کے نتیجے میں جو قرضے واپس کرنے ہیں اور اس کے لیے بھی انٹرنیشنل جو فائنانشیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ اگریمنٹ ہیں معاہدے ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے جو اضافی ٹیکسز لگانا پڑ رہے ہیں اور پھر روپے کی قدر میں جو کمی ہے اس کے سبب یہ مہنگائی اس میں اضافہ آ رہا ہے. لیکن عوام سے جب پوچھیں تو وہ ان سٹیٹس کو نہیں جانتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جیب پہ کتنا جو ہے مزید بوجھ پڑا ہے اور وہ کس طرح سے اپنی زندگی اور اپنے سانس کا رشتہ جوڑنے کے لیے کتنی سٹرگل کر رہے ہیں. سو مہنگائی ایک ایسا چیلنج ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر تجزیہ کاروں کے نزدیک حکومت کے لیے اور پرائم منسٹر عمران خان بذات خود ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, اور انہیں اس کے اوپر سوچ کے حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت ہے اور کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جائے. یہ اطلاعات آتی رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی کیبنٹ سے یہ سوال کیے ہیں کہ آخر یہ مہنگائی اس میں شدت یا اس میں اضافہ کیوں آیا ہے. یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مافیا ہیں جو حکومت کو غیر مستحکم کرنے جا رہے ہیں, لیکن سوال وہی ہے کہ اگر مافیاز ہیں تو ان کو کنٹرول کرنا بھی حکومت کا کام ہے. ادارہ شماریات کے مطابق جنوری میں کھانے پینے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا, جن میں گندم آٹا چینی گڑ کھانے کا تیل پھل اور دیگر اشیاء شامل ہیں. ادارہ شماریات یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں شہروں کی نسبت مہنگائی کی شرح میں زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور دیہی علاقوں میں ایل پی جی کی قیمت میں 7 سال جو ہے اس کی قیمت بلند ترین 7 سال کے عرصے میں وہاں پہ دیکھی گئی ہے. اور اعداد و شمار کے مطابق تحریک انصاف کی حکومت کو برسر اقتدار آنے کے بعد ملک میں مہنگائی کی شرح 5.8 8 सिफर से बढ़कर 14.6% तक जा पहुंची है। सेनेटर शिबली फ्राज हमारे साथ कमिटेड हैं कि वो हमें ज्वाइन करेंगे, होपफुली कुछ लम्हों बाद वो हमारे साथ होंगे और हमसे बात कर सकेंगे और उनसे हम मालूम करेंगे कि आखिर इस वक्त हुकूमत पे कितना दबाव है और साथ साथ पाकिस्तान की जो इस वक्त जारी सियासी सूरत हाल है, जिसमें इतिहादी तीनों बड़ी इतिहादी जो ग्रुप्स हैं, भले वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म हो, भले वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या बलूचिस्तान के अंदर जो इतिहादी हैं, वो हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से नाला नजर आते हैं। एनालिस्ट ये कहते हैं कि जो कमिटमेंट्स उनके साथ की गई हैं, बज़ाहिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत उन कमिटमेंट्स को पूरा करने में नाकाम है, जिसके सबब इत्तेहादी खफा हैं और इत्तेहादी इन तीन इत्तेहादियों के ऊपर बिलखसूस वफाक के ऊपर हुकूमत तहरीक इंसाफ की कायम है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म बहुत अहमियत रखती है पंजाब के अंदर और वहाँ से उसका अगर हुकूमत को वो छोड़ देती है या हुकूमत से अलग हो जाती है और नई ग्रुपबंदी हो सकती है तो उसमें तहरीक इंसाफ के लिए वहाँ पर हुकूमत कायम रखना मुश्किल ख्याल किया जा रहा है। ये सारे इशूज़ हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि आखिर इत्तेहादियों का बुनियादी मुतालबा उनके साथ क्या है, हुकूमत उनके मुतालबात मानने में क्यों नाकाम है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक शिबली फराज साहब वो हमारे साथ मौजूद नहीं है और उनका टेलीफोन नंबर नहीं मिल रहा है। सो हम देखते हैं कि अगर हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी इनपुट क्या है और वो क्या कहना चाहेंगे इन इश्यूज़ के ऊपर जो हमने उनके सामने रखे हैं, सो उनकी राय भी हम ले सकते हैं और अपने जो प्रोग्राम के बाकी सेगमेंट्स हैं उनकी जानेब भी फिर हम बढ़ेंगे। सेनेटर शिबली फराज साहब, तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक, उनकी कमिटमेंट थी कि वो हमारे इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस वक्त तक वो हमारे साथ टेलीफोन पे रबते में नहीं आ पा रहे हैं। दीगर जो हमारे मौजूदात हैं उनका कुछ अहाता करते जाते हैं, जब वो आएंगे तो फिर उसके ऊपर बात हो जाएगी। आपको मालूम है कि गुज़श्त रोज सैनेट में, जो कि ऐवान बाला है पाकिस्तान का, वहाँ पर एक बिल पेश किया गया कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और इस बिल को अगरचे मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन एक मौजू का ये मौजू बना रहा बहस का कि आखिर पार्लियामेंटेरियंस क्यों ये समझते हैं कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, जबकि ये तनख्वाहों में इजाफा जो पाकिस्तान के अंदर आम मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में अब तक इजाफा नहीं हो सका है। सोशल मीडिया की हद तक या बहुत सारी स्पेकुलेशन की हद तक ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद एक बड़ी रेशो में बाज़ इतलात के मुताबिक शायद 100% 100% इजाफा उसकी तजवीज़ है हुकूमत के सामने कि जो महंगाई बढ़ी है उसका तदारुक किया जा सके, उसको हैंडल करने के लिए एम्पावर किया जा सके पाकिस्तान के खासतौर पर मुलाजमत पेशा तबके को। लेकिन देखना यह है कि हतमी फैसला कब, कहाँ, कैसे आता है और कैसे उनको एम्पावर किया जाता है। सो हम कनेक्ट नहीं कर सके शिबली फराज साहब से, तो हमारा जो ये फिर फेसबुक का सेगमेंट है हम वहाँ से इजाज़त चाहेंगे और एक हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में होपफुली हमारे साथ बाकी पैनलिस्ट मौजूद होंगे और उनके साथ फिर हम बात करते हैं। तो फेसबुक लाइव से बस इतना ही और उसके बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम के अगले सेगमेंट पर बात करेंगे।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है और हमारे रेडियो के सामने इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, शिबली फराज साहब से रबता ना हो सका, तो हम जरा पिछले सेगमेंट में पहले कुछ राय ले लेते हैं सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले अगर हम ये बात करें, पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, हुकूमत अपोजिशन जो है वो हुकूमत पर खासी तनकीद कर रही है, लेकिन दूसरी जानब जो है गुज़श्त रोज़ पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर बिल पेश किया गया पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफे का, अगरचे रिजेक्ट हो गया, लेकिन आम आदमी ये सवाल कर रहा है कि जो पाकिस्तान के आम मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक भी एटलीस्ट कोई तजवीज़ है आपके सामने।
थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने व सेनेट ने इस बिल की भरपूर नमूने मुखालिफत की और हमने कहा कि ये टाइम नहीं है इस टाइम पर बात की जाए। ये जो जिन पार्टी की तरफ से चीजें उठी थी ये उनका अपना फेल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुखालिफत की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी मुखालिफत की, तो ये चीज जो है पाकिस्तान पीटीआई की तरफ के मेंबर और दूसरे मेंबर्स की तरफ से आई। बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि पहले पहले जो रेमेडी है वो पाकिस्तान के आवाम को मिलनी चाहिए, पाकिस्तान के गरीब आवाम को मिलनी चाहिए, पाकिस्तान के मजदूरों को, यूथ को और जो है किसानों को और जो अर्बन स्लम्स में और रूरल स्लम्स में रहते हैं, पहले उनका राइट है। ये गलत वक्त पर बात की गई और पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल भरपूर मजबूत भी की और सपोर्ट भी नहीं
किया। अच्छा, अब जरा इसी के साथ दूसरे मामला भी, मैं पॉलिटिक्स के ऊपर, सियासत के ऊपर भी आपकी राय लेना चाहूंगा। इस वक्त कहते हैं कि हुकूमत करना बहुत मुश्किल है और जो पीपल्स पार्टी हो या बाकी जमातें वो हुकूमत करने से भी गुरेजा हैं कि हुकूमत में जो दबाव है महंगाई के सबब और बाकी इत्तेहादियों का उनके साथ ना होना, आपके ख्याल में एक पोलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से बताइएगा। जाहिर एक पार्टी की तो लाइन है ही सही, तहरीक इंसाफ क्यों नाकाम है अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने में?
मेरे भाई, सबसे पहले तो जब रूस का इंकलाब आया था तो उस वक्त जार हुकूमत कर रहा था, उसके साथ जारीना थी, उसकी मिसेस और एक राजपुतीन था। पाकिस्तान के हालात भी इसी तरह हैं। मसलन ये है कि यहाँ जब ज्योतिषी बैठकर और जो है जारीना बैठकर और फालों पर अगर पाकिस्तान के जो मसले हल होंगे या उस पर उस बुनियाद पर जो है फार्मर्स बैठ कर फैसला करे और इस तरह का किस तरह मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क तरक्की करता है कि जब कलेक्टिव विजडम से फैसले हो और पार्लियामेंट में हो। यहाँ तो चीजें इस तरह हो रही है जो मैंने आपको,
तो फैसले कहाँ हो रहे हैं आपके ख्याल में?
बनी गाला में हो रहे हैं और जो मैंने इंकलाब रूस के वक्त जो बातें की थी वही चीज आजकल पाकिस्तान में भी हो रही है। तो जब इस तरह के फैसले हों कि इसको हटाओगे तो मुल्क चलेगा नहीं, इसको हटाओगे तो असरात ये होंगे, ज्योतिषी बैठ कर फैसला करे, पीरनी बैठ कर फैसला करे, फाल पर फैसले करें, तो फिर वो किस तरह मुल्क चलेगा? मुल्क इस तरह तो नहीं चलता है। कायदे जम के वक्त से लेकर अब तक कलेक्टिव विजडम के तहत अगर फैसले हुए हैं तो सही हुए हैं। पार्लियामेंट जो फैसले करती रही है वो सही हुए हैं। बाकी अगर उससे हटकर जो चीजें हुई हैं उस पर हमेशा पाकिस्तान को और दुनिया में हर जगह
अब ये बताइएगा सेनेटर ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि एक कमिटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, भले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोन लिया हो, इस नवाज लीग ने लिया हो या आप तहरीक इंसाफ ले रही है, जो भी कमिटमेंट्स हैं वो तो अदा करना है। वो पैसा कौन कहाँ से अदा करेगा और वो पैसे के लिए जब रिकवरीज के लिए जाना पड़ेगा तो अनफॉर्चुनेटली दो तीन बुनियादी जराए जिसके ऊपर हुकूमत इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए वो कलेक्ट करती है, महंगाई नेचुरली बढ़ती है। पीपल्स पार्टी या नून लीग के पास क्या ऐसा इसमें आजम है जो उनको सजेस्ट कर सकते हैं, तजवीज कर सकते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो मईशत की हालत बेहतर हो सकती है, संभल सकती है? और अगर ऐसी बात है तो ऐसी कोई तजवीज आपकी तरफ से पार्लियामेंट में क्यों नहीं सामने आई है?
देखिए, हमने तो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी पूरी की है, जिसने पहले कमिटमेंट्स करके गए उनकी भी पूरी की है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान का जो बैकबोन है ज़राअत है, ज़राअत पर ज्यादा तवज्जो दे, ये नहीं दे रहे हैं। नवाज शरीफ हुकूमत ने भी नहीं दिया, इसलिए हुकूमत भी नहीं दे रही है। जो बैकबोन है वो हमारी एग्रीकल्चर है, उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। दूसरा जो है मसाइल ये हैं कि भाई फॉरेन रेमिटेंसी है, वहाँ से पैसे आते हैं तो आप अपना जो लेबर जो तैयार हो रहा है उसको आप बाहर बेच सकते हैं और वहाँ से रेमिटेंसी आ सकती है। तीसरी है फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो जो है जब तक पार्लियामेंट नहीं बनाएगी और फैसले नहीं करेगी, तो जब तक हम 190 मुल्क हैं सारी दुनिया में, उनसे जब तक दोस्तियाँ नहीं रखेंगे, ताल्लुकात नहीं रखेंगे, तो हमारे बिजनेसेस नहीं आएंगे, हमें रिलेशनशिप अगर नहीं होगी तो हम किस तरह आगे बढ़ेंगे? ये दो तीन चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी इम्प्रूव किस तरह करेगी?
जी, आप मुझे मालूम है कि एक और जगह इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन अगर हम हमें चंद मिनट मजीद दे सकें, सी आर शमसी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफी हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ख्वाजा करीम साहब, आप हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया। सी आर शमसी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के सीनियर साफी तजियाकार। शमसी साहब आपके ममनून है, आपने हमें ज्वाइन किया। दो तीन इस वक्त जो पहले हमारे इनिशियल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। एक तो आप ये देख लें कि कितना अनफॉर्चुनेट है कि तहरीक इंसाफ के लोग कमिटमेंट करने के बावजूद अपना डिफेंस या अपना नुक्ता नजर पेश करने के लिए नहीं आते। फिर इस फोरम के ऊपर अगर उनके ऊपर तनकीद हो तो उसको बैठ के कितना कोई उनका वर्जन दे सकता है या उनको डिफेंड कर सकता है, ये बताइएगा। सबसे पहले पाकिस्तान में महंगाई के ऊपर ही हम बात कर देते हैं। 14% जो है वो इजाफा हो चुका है, जो कि पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा शरह है पाकिस्तान के अंदर। हुकूमत के कान के ऊपर कोई जू रिंगती नजर आती है? ये जो आवाम चीखते हुए नजर आते हैं, रोते हुए नजर आते हैं मीडिया के ऊपर, तो हुकूमत को इससे कहना चाहिए कि कोई सेंसिटाइज हो रही है, कोई असर ले रही है?
जी बहुत शुक्रिया हसन, मैं समझता हूँ आपने बड़ी तफसील से जो सवाल उठाए हैं बड़े इस वक्त संजीदा सवाल हैं, और इससे भी ज्यादा एक तश्वीशनाक जो तासर उभर रहा है कि उसकी जानब सवाए सदियों के, और वो भी सिर्फ वजीर आजम इमरान खान खुद जब किसी फंक्शन में या किसी तकरीब में जाते हैं तो वो अपनी तकरीर में कह देते हैं कि घबराना नहीं। जहाँ तक पूरी हुकूमत है, वजीर हैं, वजारतें हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आ रहा, और ना ही वो इस तरह के सवालों का सामना करने के लिए तैयार नजर आते हैं। मैं आपके जो आपने आवाम की मंजरकशी की है, अगर आप मैं याद दिलाऊं आपको कि जब साबिक वजीर खजाना असद उमर साहब IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात कर रहे थे अमेरिका में, तो उस वक्त जब वो उनकी जो गुफ्तगू थी वो टूटी है और उन्होंने बाहर आकर ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अगर हम ये शरायत मानेंगे तो अवाम की चीखें निकल जाएंगी। तो आज वही सूरत हाल है कि अवाम की चीखें तो निकल रही हैं लेकिन उनको सुनने वाला कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। इसकी बहुत सी वजूहात बताई जा रही हैं, कर्जे हैं, माजी की हुकूमतें हैं, लेकिन माफिया का जिक्र हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ करना होता है, हुकूमत के अदारे मौजूद हैं और वो कोई नए अदारे नहीं है। एक तवील अरसे से उनके सामने सारी सूरत हाल होती है, जमीनी हकायक होते हैं, लेकिन मैं एक अखबार नवीस की हैसियत से देखता हूँ तो मुझे नजर आता है कि जो जिम्मेदार अदारे हैं वो इस सारी जमीनी हकायक को उसका अदराक करते हुए भी उससे नजरें चुरा रहे हैं या उनमें अहलियत नजर नहीं आ रही कि जो माशी पॉलिसियां हैं कि ये ऐलान तो हो गई है, अब 1.5 साल होने को आया है लेकिन उसके जो असरात हैं वो नीचे तक या उनकी जो अमल बरामद होता है वो नजर नहीं आ रहा है। दूसरा इसका पहलू एक जो ये कहा जा रहा है कि कर्जे, जाहिर है कि कर्जों से मईशत तो मजबूत नहीं होगी। जो दूर दराज शहर हैं या बड़े बड़े आपके सनती शहर हैं, गुजरावाला है, लाहौर है, कराची है, या एक छोटी कॉटेज इंडस्ट्री थी, छोटे छोटे कारखाने थे, वो बड़ी तेजी से बंद होते जा रहे हैं और आवाम पर जो एक बोझ है वो उस कैफियत में उसके असाब जो हैं वो बहुत ज्यादा एक मुस्तरब कैफियत की सूरत हाल है। और जो इस साल के आगाज पर 3 बड़े फैसले सामने आए थे, तेल गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था और उसके नतीजे में बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ, तो उसके असरात जो हैं वो जाहिर है कि 1.5-2 महीने के बाद सामने आते हैं, तो अब वो सामने आना शुरू हो रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई का दबाव जो है वो मजीद बढ़ गया है और लोगों में बेचैनी की कैफियत है।
शमसी साहब हमारे साथ रहिएगा, मैं थोड़ा पॉलिटिक्स के ऊपर भी आपसे बात करना चाहूंगा। चंद सेकंड की हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फरख पताफी साहब भी हमारे साथ होंगे, सीनियर साफी हैं, कालम निगार हैं, और CR शमसी साहब हमारे साथ हैं। उससे पहले डॉक्टर ख्वाजा करीम साहब ने ज्वाइन किया था सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdubhoe.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdubhoe.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdubhoe.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urdubhoe.com।
یہ وائس آف امریکہ ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت کو دو چیلنجز, ایک تو مہنگائی کا سامنا ہے عوام کو اور اس کا دباؤ حکومت پہ, اور دوسرا سیاسی اتحادیوں کے ساتھ مل کر آگے کیسے بڑھا جائے. تین اتحادی ہیں اور تینوں کے ساتھ جو ہے اگر یہ کہا جائے کہ گورنمنٹ کہتی ہے ایک صفحے پہ تو ایک صفحے پہ نہیں ہے. تینوں اتحادی اعلانیہ اپنی خفگی کا اظہار کر چکے ہیں اور تبصروں اور تجزیوں میں اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کے اوپر غیر معمولی دباؤ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. فاروق پتافی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی ہیں, کالم نگار ہیں, ٹیلی ویژن کے اینکر پرسن ہیں. پتافی صاحب بہت شکریہ. دونوں فرنٹس کے اوپر, مہنگائی ہو یا پولیٹیکل الائنمنٹ ہو اپنے اتحادیوں کے ساتھ, کیا مسائل ہیں حکومت کے ساتھ اور اس کو ایڈریس کرنے کی اہلیت کتنی ہے حکومت میں؟
جی بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں مہنگائی جو ہے اس کا تو بڑا سمپل ایشو ہے, گو کہ حکومت کی طرف سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی پہلے جو گندم کا کرائسس آیا تھا اس کے اندر ہمیں پتا ہے کہ حکومت نے پہلے کچھ مس کیلکولیشن ہو گئی, شاید ایکسپورٹ زیادہ کر دیا, پھر بعد میں ڈبل قیمت پہ امپورٹ کرنا پڑا. شوگر کا بھی اسی طرح کا مسئلہ ہوا. لیکن یہ بات طے ہے جی کہ ایک تو فوڈ انفلیشن کے باوجود ہمارے جو سرکمسٹانسز رہ رہے ہیں اس کے اندر گورنمنٹ جو ہے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ایک سائڈ پہ آپ نے جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو بڑھایا ہوا ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ریجن میں بھی حالات میں تھوڑے سے عجیب بھی ہو رہے ہیں. انڈیا کے اندر بھی منتھ آن منتھ فوڈ انفلیشن بڑھ رہی ہے, تو یہ گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج آنے والا ہے آنے والے دنوں میں, اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے, تو اس کو دیکھنا پڑے گا. دوسرے سائڈ پہ یہ جو آپ اپوزیشن سوری گورنمنٹ کے الائز کی بات کر رہے تھے, تو یہ بات طے ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ابھی تک کوالیشن کو اپنے ساتھ لے کے چلنا نہیں آیا. مثال کے طور پہ جو پنجاب کے اندر ان کی ایگریمنٹس اور ڈس ایگریمنٹس ہیں وہ تواتر سے چل رہے ہیں, اور اس کے اندر آپ نے ایک کمیٹی بنائی, وہ کہیں پہنچنے لگی, آپ نے نئی کمیٹی بنا دی. اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ کافی ناراض ہے. اب یہ آپ نے بڑے بجا طور پہ ان دو چیزوں کو کنیکٹ کیا ہے جی. جب یہ دونوں چیزیں ڈائنمکس مل جاتے ہیں, خاص طور پہ ہنگ پارلیمنٹس والی حکومتیں جیسے پنجاب یا سینٹر میں ہے, تو وہاں پہ اچھا خاصا کرائسس کھڑا ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر نوٹس لینا پڑے گا گورنمنٹ کی طرف سے. آپ نے سوال کمپیٹنس کا بھی کیا, کمپیٹنس کا ایشو نہیں ہے جی. حکومت کے پاس جو ہے اب اکنامک ٹیم موجود ہے جس کے بارے میں بڑا مانا جاتا ہے کہ اس کو اچھا خاصا اس کی کریڈینشل مضبوط ہے, اکانومسٹ ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ سرکمسٹانسز اور پھر ہنگ پارلیمنٹ اور تیسرا جو حکومت کے ساتھ یہ بھی معاملہ ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ اکانومی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, آپ اکانومی کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں, دوسری سائڈ پہ گروتھ بھی چاہتے ہیں, تو یہ دونوں چیزیں عام طور پہ اکٹھے نہیں ہوتی تھی, تو اس لیے مسائل بڑھ رہے ہیں جی.
جی سی آر شمسی صاحب, آپ ذرا سیاسی اتحادیوں کے ریفرنس میں اپنی رائے دیجیے گا کہ کیا ایشوز ہیں. سیاسی اتحادی بھی کیا اسی وجہ سے نالاں ہیں کہ ایک بار پھر کے جو پرفارمنس ہے بظاہر یا اپوزیشن خاص طور پہ جس طرح سے اس کو پورٹری کرتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو فیس کرنا مشکل ہے, یا پھر یہ اپنی سیاست اور اپنی پارٹی اور اپنے جو کہنا چاہیے کہ بارگین کیا جاتا ہے یہ سارا کچھ اس کے لیے ہو رہا ہے؟
دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں جی. ایک تو اس میں بالکل ابھی پتافی صاحب نے جو بات کی کہ جو ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہے یا مخلوط حکومتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کمزور ہوتی ہیں, اور خاص طور پر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں وہ پائیدار زیادہ نہیں ہوتی, اور جو اتحادی ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ڈیمانڈ میں اضافہ کرتے ہیں, اور وہ ایک ہماری سیاست کا ایک طویل عرصے سے یہ ایسا ہی نظر آتا ہے. لیکن اس وقت جو پریزنٹ صورتحال ہے اس میں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ہمیں کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی, اور آ جا کر جو اور یہ جو آپ نے اپنے ابتدائی میں ایک بات کی تھی کہ تمام ایک صفحہ پر ہیں, بدقسمتی سے یہ جب سے ہماری سیاست میں حال میں یہ جو ون پیج اصطلاح آئی ہے یہ ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے. ایک پیج پر کچھ نہیں ہوتا, تمام ادارے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں آئین کے دائرہ اختیار کے اندر, لیکن اس کو آپ حکومتیں اپنی ایک سہولت کے لیے یا اپنی طاقت کے لیے روزانہ صبح شام یہ کہتے ہیں کہ ایک صفحہ پر ہیں, लेकिन वो अमलन हमें नजर नहीं आता। जहाँ तक इत्तेहादियों का, तीन जमातें बड़ी इस वक्त जो इत्तेहाद में हैं, तो उनके पास अगरचे नशस्तें कम हैं लेकिन वो एक ताकत रखती हैं, वजन रखती हैं। उनकी तरफ से जो डिमांड आ रही है वो बार बार ये कह रहे हैं हम कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमसे जब हुकूमत की तश्कील हुई थी उस वक्त जो वायदे किए गए थे तहरीरी तौर पर भी या जबानी तौर पर भी वो पूरे किए जाएं। और ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उन अपने इत्तेहादियों की जो उनसे तयशुदा मामलात हैं उन पर पेशरफ होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त तीनों जमातें जो हैं, मुस्लिम लीग काफ है या MQM है या अख्तर मैंगल साहब की जमात है, वो तीनों ये तहफुजात का इजहार करती नजर आती हैं कि उनसे जो गुफ्तगु हुई थी, जो वायदे हुए थे उन पर अमल नहीं हो रहा। और जो काफ लीग है वो जाहिर है कि एक बहुत उसके जो लीडरशिप है वो एक मच्योर सियासतदान है और तोड़ जोड़ के माहिर होते जाते हैं, और इस वक्त मुल्क में उनका शुरू से एक रोल रहा है, वो कई नामों से सामने आती नहीं है। जाहिर है कि काफ लीग जो है नून से निकली थी और नून जो थी वो एक खास माहौल में पैदा हुई थी। ये जो सियासी जमातें हैं इस वक्त जो कोई नजरियाती सियासत नहीं हो रही, एक ये बिल्कुल हमें मानना पड़ेगा कि मफादात की सियासत है और उसमें फिर असूल और प्रिंसिपल पीछे रह जाते हैं, और यही कैफियत हमें नजर आती है।
जी शमसी साहब हमारे साथ रहेगा, प्रतापी साहब आप भी हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हमारा जो अगला मौजू है वो हमारे सहाफत से ही मुतालिक है कि ऐसे वक्त में जब मीडिया के ऊपर भी दबाव है और बहुत सारे सहाफी YouTube चैनल्स खोल रहे हैं, डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, और गुज़श्ता रोज़ जो पैमरा की तरफ से तजावीज़ आई उसके ऊपर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स उसने भी रिएक्ट किया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की पार्लियामान ऐसी किसी भी लेजिस्लेशन से, कानून साजी से अवॉइड करे जिसका ताल्लुक वहाँ पे सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे पाबंदियाँ या कदगन लगाना हो। इसके ऊपर मैं आपकी राय लूंगा, लेकिन अब तक हमने जो महंगाई और पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर बात की है उस पर आपने कुछ कॉलर्स की राय ले लेते हैं। मोहम्मद शिफा हैं चित्राल से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम शिफा।
हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद शफी चित्राल बोली से बात कर रहा हूँ। अपना असद बहुत शुक्रिया कॉल लेने का। पहली बात यह है कि ये जो सेनेटर साहब थे तनख्वाहों के बारे में, मैं ये समझता हूँ कि अगर 1.5-2 लाख रुपए से जो है अगर इनका काम नहीं बनता, मजीद जो है ये मुतालिबा करते हैं कि हमारी तनख्वाहें जो है बढ़ा देनी चाहिए, तो ऐसे हालात पे इन लोगों को शर्म आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक वफाकी वजीर खुराक ने यह कहा कि 40,000 टन यौमिया जो है अफगानिस्तान स्मगलिंग होता रहा, जब आपके पास ये चीजें नहीं था स्मगलिंग क्यों होता रहा? क्योंकि अफगानिस्तान से तो हम सिर्फ फ्रूट वगैरह ही आता है, लेकिन हम टमाटर आता है, प्याज आता है, हम बगैर प्याज के बगैर टमाटर के पाकिस्तानी खाना तो बन सकता है, लेकिन बगैर फ्रूट खाए हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बगैर रोटी खाए जो है ये हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ऐसी नौबत किस तरह पहुंचा और इस मसले का हल क्या है? बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया आपका। सादिक हैं चाकी बलूचिस्तान से हमारे साथ।
बिल्कुल बिल्कुल असद भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क में तो आप लोग कह रहे हैं ना कि महंगाई का जान तक इसका सवाल है, आप जो इश्यू आपने जो रखा है ना ये आपके जो प्रोग्राम है, तो बिल्कुल जनाब इमरान खान साहब इस पर इंशाल्लाह जो है काबू पाएंगे। मलेशिया के दौरे में हो गए वो भी मजबूत कदम होगा, लेकिन इस वक्त जो तनख्वे के बारे में कह रहे हैं लोग ना, तो सैनेट में जो बिल पास होना था ना इस तनख्वे के बारे में, यकीन मानिए इस महंगाई में सद भाई किसी गरीब का झूला भी नहीं जल सकता है। तो अगर तनख्वाह न बढ़ाया जाए तो और क्या किया जाए, बताइए ना। सबसे बेहतर बात है इंशाल्लाह अब इमरान खान साहब बेहतर बनाएंगे।
बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉल लेते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे मीडिया वाले इश्यूज के ऊपर। मोहसिन है लैया से हमारे साथ।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
जी। मैं तो ये बात कहना चाहूंगा, अपने जो पहले गवर्नमेंट को शर्म आनी थी, ये कोई भूखे लोग तो नहीं होते, ये तनख्वाह, ये तो इतना मुल्क मुश्किल में है, इनको तो फीस भी काम करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में उस वक्त तक सिस्टम नहीं बदला जा सकता जब तक हर कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना करे, और ये तो अय्याशियां कर रहे हैं, बस इतना कहना चाहता हूँ।
असल बात ये मोहसिन ने जो कही कि उसमें जाहिर है ऑफ कोर्स हुकूमत के ऊपर फराइज जरूर डाले, اور آپ اپنے حق اور استحقاق کی بھی ضرور بات کریں, لیکن اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں, بھلے وہ ٹیکس ڈاکیومنٹیشن ہو, ٹیکس ذمہ بنتا ہو یا نہ بنتا ہو, لیکن ڈاکیومنٹ ضرور ہونا چاہیے, دستاویزی شکل ضرور ہونی چاہیے. چند سیکنڈ کی ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, میڈیا ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے کہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے پاکستان کے اندر ڈیجیٹل میڈیا کے ریفرنس میں کیا کنسرن سامنے آ رہے ہیں.
اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کریں گے پروگرام کے حصے میں, پاکستانی پارلیمان ڈیجیٹل میڈیا پر قدغن کی سفارشات مسترد کر دے, یہ کہنا ہے صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کی جانب سے جو یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ پیمرا نے 8 جنوری کو اپنی ویب سائٹ پر اس حوالے سے کچھ تجاویز پیش کی تھی اور اس پر عوام سے رائے طلب کی تھی. آر ایس ایف کے مطابق تجاویز پہلے سے حکومتی ایجنسیوں کو آن لائن سینسرشپ کے لیے جو اختیارات حاصل ہیں ان میں مزید اضافہ کر دے گی, اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے چلنے والے ویڈیو پلیٹ فارمز یوٹیوب, ویمیو اور نیٹ فلکس جیسے جو چینلز ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے. سو فرخ پتافی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور سی آر شمسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سو ان سے ہم رائے لیتے ہیں. پتافی صاحب, آپ سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کے بہت سارے کولیگز ان دنوں یوٹیوب چینل کھول رہے ہیں, دو ریزنز, ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ آف ایئر بھی ہوئے ہیں باوجود, اور پھر وہ اس چینل کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کو ایک سورس آف انکم بھی ہے, لوگ کچھ اس کو پری ایمپٹ بھی کر رہے ہیں کہ شاید آنے والے وقتوں میں صرف ڈیجیٹل میڈیا ہی رہ جائے, میڈیا کو اپنے چیلنجز بھی ہیں, لیکن گورنمنٹ کے یا اداروں کے کیا خطرات یا خدشات ہیں کہ پیمرا کو باقاعدہ تجاویز دینی پڑتی ہیں کہ ان کو بھی کب کیا جائے, یا باقاعدہ یہ تک تجاویز آئی ہیں, رپورٹ ہوئی ہیں کہ ان کے لیے لائسنس فیس تک جو ہے وہ مقرر کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے.
بنیادی طور پہ او ٹی ٹی سے شروع ہوا, اوور دا ٹاپ اس کو کہتے ہیں ٹرانسمیشن وغیرہ, یوٹیوب نہیں بھی, یوٹیوب لائیو کا جو خاص طور پہ ہے نا, یوٹیوب ٹی وی کا جو کانسیپٹ ہے اسٹارٹ اس سے کیا گیا, نیٹ فلکس وغیرہ. اب پیمرا کیونکہ پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر جتنے بھی بیرون ملک سے پروگرامز آتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی خاص طور پہ یہ سمجھا گیا انیشیلی, دس واز دی کیزس بلی اور ریزن بیٹر جو انہوں نے بتایا کہ اس کو کہیں پہ جا کے وہ کریں گے ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن معاملہ وہی ہوا جو ہماری بیوروکریسی میں اکثر ہوتا ہے, اس کے بعد وہ پورا کا پورا یوٹیوب کے اوپر آ گیا, فیس بک کے اوپر آ گیا, فیس بک لائیو اور ٹویٹر لائیو کے اوپر معاملات شروع ہو گئے. تو اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جس بھی عقل مند نے اس کے اوپر یہ پروپوزل دیے ہیں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یوٹیوب کا سرور پاکستان میں نہیں ہے, آپ یا تو یوٹیوب پورے کے پورے کو بین کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے کسی کو بین نہیں کر سکتے, کسی بھی چینل کو نہیں کر سکتے, بیکاز بہت انٹیگریٹڈ ہے, تو آپ اس طرح کی لائسنسنگ سے لوکل لوگوں کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. آپ یوٹیوب کو اگر آپ کے پاس آپ کے خیال میں کوئی کانٹینٹ ایسا ہے جو کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے, تو اس کے لیے پھر آپ کو یوٹیوب کے سرور سے ہی کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے لائسنس کرنا بھی ہو تو پھر آپ کو, حالانکہ یہ یوٹیوب کے بزنس ماڈل کے بالکل خلاف ہے, لیکن آپ کو یوٹیوب سے ٹیکس کرنا پڑے گا, نہ کہ آپ کو لوکل پاپولیشن سے کرنا ہوگا. تو یہ معاملہ تو جی ویسے ہی نان اسٹارٹر لگتا ہے. اگر یہ قانون بنائیں گے تو اس کے بعد دو کام تو مجھے نظر آتے ہیں, رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کا تو اپنی جگہ پہ ہوگا, لیکن اس وقت جو ہے نا مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک سائڈ سے لیگل چیلنج آ جانا ہے کلاس ایکشن کے طور پہ تمام یوٹیوب کے کانٹینٹ کریٹرز کی طرف سے, اور دوسرا جو یوٹیوب ہے وہ بھی ان پہ کیس کر دے گی کہ آپ جو ہے کیسے کسی چیز کو اس طرح سے بلاک کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اٹ واز سیلف گول جس سے ہم کو بہت نقصان ہوگا, جی فائدہ نہیں ہوگا.
سی آر شمسی صاحب, آپ کی رائے.
جی میں سمجھتا ہوں کہ جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. بدقسمتی سے پھر مجھے ایک جو ایک تجربہ ہے طویل سارے صورتحال کا, कि हर हकूमत चाहती है कि जो मुखालफत में या तनकीद की आवाज़ें उठती हैं उनको हर सूरत दबाया जाए। लेकिन जिस तरह अभी पताफी साहब ने बहुत वैलिड बात की कि ये एक अब सेटेलाइट का दौर है और इस चीज़ों पर आप पाबंदी उस तरह नहीं लगा सकते, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक रवैया रहा है हुकूमतों का वो हमेशा फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ रहा है, चाहे वो डिक्टेटर्स की हुकूमत हो चाहे जमहूरी हुकूमतें हों, और जमहूरी हुकूमतें भाई खौफ में मुब्तला हो जाती है शायद तनकीद से उनकी हुकूमत कमज़ोर होगी। हालांकि ये होता है कि तनकीद से आपको रास्ता मिलता है और आपको पाबंदी के बजाय जो माहौल है जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने की ज़रूरत होती है। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत के दौरान एक मीडिया कोर्ट्स की भी तजवीज़ आई थी, इस तरह के नित नए जो ये पाबंदी के और कदगन लगाने के जो बंद कमरों में तजावीज़ होती हैं वो हमेशा नाकाम होती हैं और उसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो आवाम को और ख़ुद हुकूमत को होता है। हुकूमत बाज़ाहिर उसके जो तर्जमान होते हैं जो मशावरत होती है वो अपने कि हम पाबंदियाँ लगा रहे हैं और इससे बेहतरी आएगी वो अंधेरे में रखते हैं हुकूमतों को भी और अदारों को भी, और जब वो अंधेरे में फैसले होते हैं तो उनके नुकसान हमेशा माजी में मनफी रहे हैं। और इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि पाबंदियाँ लगाने के बजाय जो कानून है जो हालात हैं जो पूरे माशरे की कैफियत है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और ये जिम्मेदारी आयद होती है हमारी पार्लियामेंट पर हमारी सियासी जमातों पर हुकूमत पर। लेकिन बदकिस्मती से ये तमाम जो स्टेक होल्डर हैं जो आवाम के मुहाफ़िज हैं उन्होंने आवाम को लावारिस कर दिया है और पाबंदियों के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आगे खाई है।
जी बहुत शुक्रिया सैयद शमसी साहब सीनियर सहाफ़ी तजिएकार आप हमारे साथ थे, फरूख पताफी साहब सीनियर सहाफ़ी कालम निगार एंकर पर्सन आपने हमें ज्वाइन किया, आपके भी हम बेहद ममनून हैं। सामीन एक ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर टिड्डी दिल के हमले के ऊपर, एक ब्रेक के बाद।
ताज़ा तरीन खबरों खुसूसी फीचर्स टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम में जहां रंग मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ असफर इमाम। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे टिड्डी दिल का हमला। हमने तो खैर किताबों में पढ़ रखा था सुना है पाकिस्तान के अंदर, ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि टिड्डी दिल का बड़ा हमला जो है पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हो रहा है। सैकड़ों एकड़ अराजी जो है उसको शदीद नुकसान पहुँच रहा है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब और जनूबी वस्ती अजला में भी इन दिनों फसलें जो हैं वो इस टिड्डी दिल के हमलों की जद में हैं, और इससे पहले जो है वो सिंध के अंदर ये रिपोर्ट होता आ रहा है और पंजाब के वस्ती ज़रई अजला साहिवाल बिहाड़ी पाकपतन और उकाड़ा समेत मुख्तलिफ शहरों में टिड्डी दिल जो है वो हमला आवर है, जिसके बायस मकई गंदम धान सरसों और आलू समेत फसलों को वसी पैमाने पर नुकसान पहुँच रहा है। टिड्डी दिल के हमले के बायस किसान खासे परेशान हैं। इसमें कोई साइंटिफिक इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, हुकूमत के सामने क्या तदाबीर हैं, किसान बजाते खुद हुकूमत के साथ कितने लाइजान में हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रबिया सुल्तान साहिबा ने, रबिया सुल्तान ने डायरेक्टर हैं फार्मर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की, बजाते खुद फार्मर हैं काश्तकार हैं। मीर मोहम्मद पढ़ियार हमारे साथ होंगे, फार्मर सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर के और इसके साथ साथ वो रूरल अपलिफ्ट के ऊपर काम करते हैं। रबिया बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये टिड्डी दिल इसके बारे में एलैबोरेट करें, माजी में भी ये अटैक हुए, इसकी बार अब की बार ये क्यों कर मुख्तलिफ और ज्यादा खतरनाक हमला तसव्वुर किया जा रहा है?
जी बहुत शुक्रिया आपका, और ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त जो ये टिड्डी दिल का मसला ये खासा गंभीर हो गया है और इसकी कई वजूहात हैं, और मेरे ख्याल से सबसे जो इम्पोर्टेंट वजह है कि इस मेहनत को हमने कंट्रोल करना था। तो मुझे याद है कि जून 2019 में एक रिपोर्ट शाया हुई थी डॉन में और उसमें इसके बारे में बात की गई थी कि ये एक मसला बनता जा रहा है, तो उस वक्त हुकूमत ने इसको इतने سیریسلی نہیں لیا اور یہ کہا گیا کہ جی آپ فائر کریکر سے اور شور شرابے سے آپ اس کو اڑا دیں بھگا دیں فیلڈ سے. میرا خیال سے جو کوتاہی ہوئی ہے وہ اس کا میگنیٹیوڈ سمجھنے میں انڈرسٹینڈ کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے. پھر حکومت نے کوئی 102 اسپیشل ٹیم بھی بنائی جنہوں نے اس کو مانیٹر کرنا تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو 102 ٹیم بنائی گئی تھی انہوں نے کیا مانیٹرنگ کی, کیونکہ یہ تو مصیبت بڑھتی گئی اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے سے تیسرے صوبے میں یہ پرابلم بڑھ گیا ٹڈی دل کا. اور تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو ٹھیک ہے مانا کہ یہ ایسی سچویشن تھی, یہ سودان سے اڑتا ہوا آیا, اس کی ایک پورا روٹ ہوتا ہے اور کلائمیٹ چینج کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھی اس میں بہت اہم کردار ہے اور
ایکسٹینڈڈ ویدر سے
جی یہ واپس نہیں جا سکا, وہ سب باتیں بالکل ٹھیک ہیں. لیکن ہمیں ایف اے او نے بھی 2019 میں اگست میں یہ بات کی تھی, اس وقت بھی ہم ڈینائل میں تھے کہ نہیں اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو میرا خیال سے یہ تو ہم ایک ڈینائل کی ہماری ایک پالیسی ہے کہ جی سب ٹھیک ہے اور ہم مانیٹر کر رہے ہیں اور بار بار یہی پچھلے میں 8-1 مہینے کیا نیوز فالو کر رہی تھی تو اس میں بارہا یہی کہا گیا کہ جی یہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور حکومتی لیول پہ ہر طریقے سے اس کو نبٹ لیں گے ہم اس مسئلے سے. لیکن وہ آپ اس پر
ویسے اگر نبٹنے حل ہے کیا اس پہ کوئی جو ہربیسائیڈ پیسٹیسائیڈ کچھ کام کرتا ہے اس کے اوپر افیکٹو ہے, کرنا کیا پڑتا ہے؟
اب حکومت کو محنت کیا اس پہ اسپرے کر رہی ہے. تو اگر ابھی تک تو یہی کہا جاتا ہے کہ پیسٹیسائڈ ہی اس کا حل ہے اور یہ جو جس کو ہم ٹوٹکا کہتے ہیں یہ شور اور فائر کریکر اور یہ وہ اس سے کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن جس اسکیل پہ جس میگنیٹیوڈ پہ یہ ہمارے اور ہندوستان میں بھی پاکستان میں, کیونکہ جو ڈیزرٹ کا ہمارا سارا ایریا ہے راجستھان کا چولستان کا اور پھر یہ تھل ڈیزرٹ ہے تو یہ اس کے لیے بریڈنگ گراؤنڈ ہے. اور میں 2-3 دن پہلے ملتان میں یونیورسٹی ایگریکلچر میں تھی تو وہاں پہ وہ کچھ بایو پیسٹیسائڈ کے اوپر ابھی کام شروع کیا ہے انہوں نے. تو اللہ کرے کہ وہ کچھ ان کو اس میں سے مل جائے, اور کیونکہ اتنی زیادہ پیسٹیسائڈ اسپرے کرنا بھی میرا خیال سے کوئی انوائرمنٹ فرینڈلی یہ ایکٹیویٹی نہیں ہے.
صحیح.
لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو جیسے ڈینگی کی مہم چلا کرتی تھی اور اس پر بڑا شور ہوتا تھا اور کچھ نہ کچھ کام ہوتا تھا, تو میرا خیال سے یہ اس کو وار فوٹنگ پہ اب پرائم منسٹر نے کل اس کے اوپر میٹنگ بلائی اور اس کو مطلب 6 مہینے گزارنے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. تو وہ سوال یہ کہ ٹھیک ہے پے کر رہے ہیں ان شاء اللہ, اس سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کنٹرول ہم کر لیں گے. لیکن سوال
سو ایون یہ جو ہماری اس وقت جو آلریڈی تیار ہیں کراپس ان کے اوپر بھی اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کی پروڈکشن کے اوپر, ایک بات. اور دوسرا کہ فارمرز ایسوسی ایشن اس ریفرنس میں حکومت کے ساتھ کس حد تک لائزون میں ہے؟
فارمرز ایسوسی ایشن کو اس موضوع پہ نہ بلایا گیا نہ اس کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے کسی بھی فارمر سے, اور فارمر کافی پریشان ہے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جن جن کے کھیتوں میں یہ آفت آن پڑی ہے تو وہ بےچارے اپنے ہی وہ اس کو نپٹاتے پھر رہے ہیں اور وہ کرتے پھر رہے ہیں. مطلب کوئی حکومت بھی کام کر رہی ہے لیکن ایک جو چیز نظر آتی ہے کہ ایک مل کر ایک ایفرٹ ہو, کاشتکار بھی حکومت بھی باقی بھی ہمارے جو اکیڈیمیا ہے جو ہماری ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی یہ کام ہوتا ہے, اسٹوڈینٹس ہیں, یہ سب مل کے اس کو ایز اے کیمپین کریں تو میرا خیال سے زیادہ افیکٹو ہوگا. نہ کہ ہمارا پلانٹ پروٹیکشن پہ جو پلانٹ پروٹیکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذمے یہ کام آتا ہے تو وہاں سے بھی پوچھنا چاہیے, ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے اس کو کیوں نہیں مانیٹر کیا. اس کی اصل
جی ربیہ کی آواز آنا بند ہوگی. ہمارے ساتھ امیر محمد پڑیہار صاحب ہمارے موجود ہیں, فارمر سیکرٹری ایگریکلچر, اس کے ساتھ ساتھ رورل آپریٹ لفٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. میر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کے خیال میں ظاہر یہ کہتے ہیں کہ یہ سیزنل ہیں, یہ ٹڈی دل اس کا حملہ ہوتا ہے یہ واپس چلے جاتے ہیں, یہ کیوں کر زیادہ وقت کے لیے روکی گئی اور پھر ان کی گروتھ بھی ہوگی اور اب یہ کتنا بڑا چیلنج بن رہے ہیں فصلوں کے لیے, سندھ میں نے اتنا کتنا ڈیمیج کیا ہے اور کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے؟
थैंक यू असल साहब, बात असल ये है कि अगर दो तीन महीने पहले जो ये इंडिया से राजस्थान से इंट्रो कर में फिर बदीन में, बदीन का मैं खुद रहता हूँ, बदीन में रिटायरमेंट, फिर टाटा, फिर कराची, कराची से होते हुए फिर जाम शोर होते हुए वापस सिंध में दाखिल हुए, फिर चोलस्तान पहुँच गया। अच्छा इसमें अगर शुरू से देखें तो ये इसके जो लोकेस की जो ब्रीडिंग है इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जब इसका ये तो फॉर्चून आप कहेंगे क्लाइमेट कंडीशन ऐसे थे कि उनको वो शायद वो सूट नहीं कर रहा था, वरना इसका जब ब्रीडिंग इतनी फास्ट होती है कि कोई भी जो है दुनिया की ताकत इनको फिर वो रोक नहीं सकती। बहरहाल उसमें अगर शुरू से देखें तो सिंध गवर्नमेंट का एटीट्यूड ये था कि जी ये फेडरल गवर्नमेंट का मसला है, हमारा नहीं है, और प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वो काम कर रहा नहीं कर रहा, उसको करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि सिंध गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी ज्यादा की है सिंध के एग्रीकल्चर के साथ, सिंध के इवन ये कराची में आपको पता है कराची में बहुत सिंध के सारे फॉरेस्ट के साथ कि वो उस पर चुप करके बैठ गया। पंजाब में जब दाखिल हुआ देखा चोलिस्तान में तो उन्होंने वो एक्टिव हो गए, उन्होंने वहां साथ कर दिया वो एयर प्लांट प्लांटेशन से जो क्या पेस्टिसाइड का क्या उसमें एक जहाज में उनका क्रैश हो गया, और फिर जो वो सिंध अब कहता है जी कि हम जो इसमें प्रोक्योर कर रहे हैं चाइना से पता नहीं कहाँ से ये प्लान करेंगे स्प्रे करेंगे। देखिए आजकल प्राइवेट सेक्टर में हर चीज मिलती है, प्लान भी मिलते हैं, पेस्टिसाइड भी है, स्प्रे मशीन में इतना बड़ा मसाले जो पहले हुआ करता था जब हम डीसी थे उस जमाने में ये चीजें नहीं होती थी 80s में 90s में। अब तो हर जगह आपको ये भी बताता रहूँ कि ये बात करते हैं रेगुलरली, आई डोंट नो नाउ आज ऑफ डीसी के पास बहुत सारी रिपोर्ट आती थी अबाउट मूवमेंट ऑफ लोकेस इंडिया की ईरान की सारी आती थी, उस पर वो सारा नजर रखते थे, खास वो तो जमाने चले गए। अब इसमें आप देखें बुनियादी बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी जो है सिंध के लोगों के साथ बात की, चलो ठीक हुआ। अब इमरजेंसी कब डिक्लेयर होती है, दो दिन पहले जब ये जो लोग केस होते हुए केपी के में दाखिल हुए तो क्योंकि फेडरल मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी ने कहा जी ये बहुत सीरियस हो गया, और उन्होंने मीटिंग कर ली नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी को बुला उनको बुला रही है करते वाई देवर स्लीपिंग फॉर दैट लॉन्ग टाइम, ये तो बहुत बड़ी ज्यादा अनफॉर्चुनेटी है कि इसको मरकज जो है वो बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी तो फेडरल गवर्नमेंट की है, क्योंकि ये जो लोकल थे ये ट्रांस बाउंड्रीज के मूवमेंट होते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो दोनों ने इसको सीरियस नहीं लिया। ये शुक्र है अल्लाह का कि इसकी जो है क्लाइमेट की वजह से ज्यादा ब्रेनिंग नहीं हुई, लेकिन इट कैन इमर्ज एनी टाइम, तो इस सिलसिले में किसी को कोई फिक्र नहीं है। अब अगर आप देखा जाए इस सिलसिले में तो एग्री डिपार्टमेंट के पास इतने सारे एक्सपर्टाइज है, उनको पता है कि कौन से पेस्टिसाइड, अच्छा वो अगर नहीं आती है अगर आप नेट पर चला जाए हर चीज आपको मिल जाती है। इंडिया ने कंट्रोल किया, इंडिया ने कैसे कंट्रोल किया, इंडिया ने कंट्रोल कर लिया, तो वो ये ऐसी बात नहीं जो, लेकिन असली पॉइंट ये कोई सीरियस नहीं, अभी भी रिस्क है क्योंकि वो जो लोकल से मूव कर रहा है वो एक जगह बैठी है, अचानक क्लाइमेट सूटेबल उसको फेवरेबल मिलती है और वो ब्रीडिंग शुरू कर देता है तो फिर क्या होगा।
जरे प्रॉम्प्ट करना चाहिए और फौरी देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मीर मोहम्मद बडियार साहब, आपने में ज्वाइन किया, रबिया सुल्ताना साहबा सुल्तान साहब आपके भी हम उन्होंने आप हमारे साथ थे। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की जानब जाएंगे। पाकिस्तान की सियासत पे हमने शुरू में बात की, अब जरा अमरीका की पॉलिटिक्स पे बात हो जाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब करने जा रहे हैं आज रात को, और इसमें आमतौर पर रिवायती तौर पर जैसे कि आप जानते हैं कि सदर जो है वो कांग्रेस के दोनों ऐवानों के सामने आइंदा साल के जो लाहे अमल है उसके खद्दोखाल पेश किया करते हैं, लेकिन सदर ट्रंप जब ये खिताब करने जा रहे हैं तो उससे ऐन अगले दिन जो है उनकी इम्पीचमेंट या उनके मुआवजे के लिए सेनेट के अंदर वोटिंग होने जा रही है। सो इस एतबार से कहा यह जा रहा है कि वो अमरीका की तारीख के पहले सदर हैं जो न सिर्फ इम्पीच होने के बावजूद जो है वो अपनी अगली कैंपेन में हैं बल्कि वो एड्रेस भी करेंगे। इससे पहले दो सदूर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और उन्होंने एड्रेस किया था इम्पीचमेंट के दौरान भी स्टेट ऑफ द यूनियन। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं, लीडिंग पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन लीडर और लॉयर और सर डोनाल्ड ट्रंप उनके करीबी साथी ट्रंप साहब के। और तारड़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है। स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस बड़े क्रिटिकल टाइम में होने जा रहा है, प्रेसिडेंट साहब क्या कह सकते हैं, उनकी टोन एंड टेनर क्या हो सकता है आज के ऐवान के सामने, क्या आप एंटिसिपेट करें?
सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा स्टेट ऑफ द यूनियन के बारे में। ये 1913 से शुरू हुआ ट्रेडिशन और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2 इस प्रेसिडेंट ने कौम को एतमाद में लेना होता है, बताना होता है कि हुकूमत के मामलात कैसे चल रहे हैं और व्हाट इज द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द कंट्री। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले आज क्योंकि ये इलेक्शन का साल है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब स्टेट ऑफ द यूनियन को यूज करेंगे एज अ अपनी कैंपेन वाली साइड पे, उसमें वो ब्रैग करेंगे इकॉनमी के बारे में, जिस तरह के उन्होंने $35 बिलियन टैरिफ के जरिए उन्होंने गेन किया। उसके बाद आज मिला जुला रिस्पॉन्ड है कि 20 मिनट के बारे में वो बात करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने चाइना के साथ जो डील साइन की है, पहला जो उसका था वर्जन, वो USMCA के बारे में बात करेंगे, मिडल ईस्ट पीस प्लान के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसी चीजें उनको ब्रैग करें वो, जिस तरह अगले दिन सुपर बॉल के दरमियान उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन को टारगेट किया, इसी तरह आज वो कोशिश करेंगे कि कैंपेन को जेन में रख के वो कोशिश करेंगे अपने जो पिछले साल थे उन्होंने जो कुछ अचीव किया वो सामने कौम के रखेंगे ताकि उनको कैंपेन में फायदा हो सके।
अब आ जाते हैं जरा इम्पीचमेंट की तरफ। आपके ख्याल में इम्पीचमेंट के क्या इम्कान हैं वहां पे? जाहिर है बजहर ये लग रहा है कि वहां पे इम्पीचमेंट नहीं होगी, लेकिन शायद कोई जैसे नोटिस कह लें या एक इंतबाह कह लें कि वो जारी कर दिया जाएगा कि आपको कैसे एक लिमिट्स के अंदर और हदूद के अंदर रहना है, क्या एंटिसिपेट करते हैं?
देखिए इम्पीचमेंट के बारे में जो मेरी ओपिनियन है, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि इम्पीचमेंट की फाउंडेशन करप्शन पे है। इस पे पिछले दौर के करप्शन के चार्जेस थे बाइडन साहब के, जो हंटर बाइडन उनके बारे में, और आपने ये नोट भी किया होगा कि इम्पीचमेंट जू जू ये इन्होंने ड्रैग किया है वो बैकफायर करती रही है और इसमें प्रेजिडेंट साहब के पोल नंबर ऊपर जाते रहे हैं। मेरे ख्याल में इम्पीचमेंट होने के कोई चांसेस नहीं है बिल्कुल। इसमें सेनेट में मेजॉरिटी रिपब्लिकन की है, वो एक्सरसाइज करेंगे और उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कई चीजें सेफ्टी मेजर कई लेयर रखे हैं, जिस तरह किल बिल था उन्होंने बनाया और दूसरे इकदाम, मेरे ख्याल में इम्पीचमेंट हैज कम टू अपने मंत की अंजाम तक पहुंच चुकी है। मेरे ख्याल में कल फाइनल हो जाएगा इस चीजों में और मेरे ख्याल में डेमोक्रेट मजाती तौर पर मुझे पूछें तो ये बैकफायर किया डेमोक्रेट पार्टी को, इससे उनकी बौखलाहट नजर आती है। कोई सॉलिड ग्राउंड्स नहीं थे इम्पीचमेंट के, जिस तरीके से पहले रशियन इन्वेस्टिगेशन थी उसमें से कुछ नहीं निकला, मेरे ख्याल में इसमें से भी कुछ नहीं निकले।
बहुत शुक्रिया साजिद अरड साहब, लीडिंग पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन, आप हमारे साथ थे, आपका बेहद शुक्रिया। और इस पे जरा अब डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्जन लेते हैं। अली मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है, डेमोक्रेटिक पार्टी से उनकी वाबस्तगी है, उनके लिए काम करते हैं। मिर्जा साहब ममनून है आपके, आपने हमें ज्वाइन किया। दोनों डेवलपमेंट्स पे, यानी एक तो रात होने जा रही है, कैसे प्रेसिडेंट जो अगले दिन इम्पीचमेंट के वोट का सामना कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं, कितना वो ग्राउंड तैयार कर सकते हैं जैसे तारण साहब कह रहे थे, कितना इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, और ये कि सेनेट के अंदर अगर इम्पीचमेंट नहीं होती, जिसके इम्कान हैं कि नहीं होगी, तो ये कितना बड़ा सेटबैक होगा डेमोक्रेट के लिए?
देखिए इम्पीचमेंट तो यकीनन नहीं होगी, ये बात मैं पहले से कहता आ रहा हूँ। मैं डेमोक्रेट हूं और जब तक के बर्नी सैंडर्स या कोई उन्हीं की तरह का ईमानदार प्रोग्रेसिव आदमी थर्ड पार्टी बना के नहीं चलाता, मैं डेमोक्रेट ही रहूंगा। लेकिन ये कि इसमें कोई हकीकत कोई शको शुक्वे की गुंजाइश नहीं है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की और डीएनसी और डेमोक्रेटिक पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो या तो बहुत ही ज्यादा डिसऑनेस्ट है और या बहुत ज्यादा इनकॉम्पिटेंट है, और दोनों सूरतों में, चाहे वो इनकॉम्पिटेंट हो या डिसऑनेस्ट हो, दोनों सूरतों में उनको रिजाइन कर देना चाहिए, जैसा कि इसका सबूत कल आयोवा के कॉकस में भी मिला जहां उन्होंने इतना बड़ा मैसअप किया है। और इसी तरह इम्पीचमेंट में भी उन्होंने इतना ही बड़ा मैसअप किया है। ये जाहिर बात है कि ये रशिया की कहानी और ये इम्पीचमेंट वगैरह की कहानी एक पॉलिटिकल गेम था, और आप पोलिंग देख लें कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा बर्नी डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में और डिसअप्रूवल में, कोई 19-20 का भी मुश्किल से फर्क पड़ा है, वही एक स्ट्रेट लाइन की तरह से उनकी फेवरेबिलिटी और उनकी मुखालिफत जो है वो उसी तरह चल रही है, थोड़ा ऊपर नीचे होकर, और तो इम्पीचमेंट का तो कोई चांस नहीं है। और जाहिर बात है कि वो अपने जहां तक स्टेट ऑफ द यूनियन की आपने बात की, तो उसमें जाहिर बात है कि वही झूठ जो पिछले ट्रंप भी कोई सही आदमी तो है नहीं, तो जो झूठ वो पिछले 2 सालों से बोलते चले आ रहे हैं कि वही झूठों को वो दोबारा रिवाइव करेंगे। इसराइल के साथ उन्होंने जिस तरह एक्सपेंशन और उसके इलीगल ऑक्यूपेशन और इलीगल सेटलमेंट्स को लीगल हैसियत देने की कोशिश करके ईरान के साथ बहुत ही गलत पॉलिसी इस्तेमाल करके एक बदतरीन जंग के चांसेस जो वहां पर मिडिल ईस्ट में बढ़ा दिए वो उसके हवाले से जाहिर बात है झूठ बोलेंगे कि हमने जो है बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली।
आपको नहीं लगता कि लोग उसमें इंप्रेस होंगे? बहुत शुक्रिया अली मिर्जा साहब, आपने ज्वाइन किया। साजिद तारर साहब इस सेगमेंट में हमारे साथ थे। आज का प्रोग्राम हम यहाँ पे खत्म करेंगे। प्रोड्यूसर थे असवर इमाम और इंजीनियर मिशेल लेविंस्की। असद हसन को इजाजत दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
आपके हाथ में
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
सदर डोनाल्ड ट्रंप के सालाना स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के एक रोज बाद बुध के दिन सेनेट इस बारे में एक हतमी वोटिंग करेगी कि आया उन्हें बरी किया जाए या उन्हें कानून शिकन करार देकर उनके मनसब से हटा दिया जाए। दो अमरीकी सुदूर मुआवजे के खतरे के तहत स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब कर चुके हैं, डेमोक्रेटिक बिल क्लिंटन और रिपब्लिकन रिचर्ड निक्सन। व्हाइट हाउस से वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा पैटसी विदाकुस्वारा ने अपनी रिपोर्ट में ये जायजा लिया है कि उन दोनों सुदूर ने अपने खिताब में क्या अंदाज अपनाया था और ट्रंप उनसे क्या सीख सकते हैं। रिपोर्ट के साथ मैं हूं यास्मीन जमील। ट्रंप अमरीकी तारीख में ओहदे से हटा दिए जाने के खतरे के तहत स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब करने वाले तीसरे सदर बन सकते हैं। 1992 में अमरीका के 42वें सदर बिल क्लिंटन ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा था,
Let us lift our eyes as one nation, and from the mountaintop of this American century, look ahead to the next one, asking God's blessing on our endeavors and on our beloved country.
आएं हम एक कौम के तौर पर आगे की तरफ देखें और अमरीकी उरूज की इस सदी से अगली सदी पर नजर डालें और खुदा से अपनी कोशिशों और अपने प्यारे मुल्क के लिए फजलो करम की दुआ करें। और 1974 में सदर निक्सन ने वाटरगेट स्कैंडल का सामना करते हुए अपनी तकरीर का एक हिस्सा अपने दिफा के लिए इस्तेमाल किया था।
I believe the time has come to bring that investigation and the other investigations of this matter to an end. One year of Watergate is enough.
मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि इस मामले पर उस तफ्तीश और दूसरी तफ्तीशों को खत्म किया जाए। वाटरगेट का एक साल काफी है। ये अल्फाज थे रिचर्ड निक्सन के। वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के थॉमस श्वार्ट्स कहते हैं कि इसके मुकाबले में क्लिंटन ने एक मुख्तलिफ अंदाज अपनाया था।
It was a very optimistic, upbeat speech about how good conditions in the United States were, how powerful the American economy was, and how many jobs had been created and what economic recovery had been done, but completely ignored the impeachment issue.
वो एक बहुत मुस्बत अंदाज था। वो इस बारे में एक खुश उम्मीदी से भरपूर तकरीर थी कि अमेरिका में हालात कितने अच्छे हैं, अमेरिकी मईशत कितनी मजबूत है और कितने बहुत से रोजगार पैदा किए जा चुके हैं और ये कि इक्तसादियात बहाल हो चुकी है, लेकिन उन्होंने मुआवजे के मामले को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। ये अल्फाज थे वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के थॉमस श्वार्ट्स के। 5 फरवरी का खिताब ट्रंप के लिए नवम्बर के इंतखाब से पहले खास तौर पर अहम है। हेरिटेज फाउंडेशन के सीनियर लीगल फेलो हैंस वॉन स्पेकोफ्स्की कहते हैं,
The economy is roaring along. Unemployment has been extremely low. In fact, the unemployment rate for African Americans and Hispanics is
record low. معیشت ترقی کر رہی ہے، بیروزگاری انتہائی کم رہی ہے اور درحقیقت افریقی امریکیوں اور ہسپانویوں کے لیے بیروزگاری کی شرح ریکارڈ سطح پر کم ہے۔ یہ اس قسم کی کامیابیاں ہیں جن کے بارے میں میرا خیال ہے کہ صدر بات کرنا چاہیں گے، قطع نظر اس کے کہ کانگریس میں مواخذے سمیت اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ये अल्फाज थे हेरिटेज फाउंडेशन के हैंस वॉन स्पेकोवस्की के। क्लिंटन को बरी कर दिया गया था जबकि निक्सन मुआवजे से कबल मुस्ताफी हो गए थे। تجزیہ کاروں کو توقع ہے کہ ٹرمپ کا انداز اپنے پیش رووں کا ایک ملا جلا انداز ہوگا. وینڈربلٹ یونیورسٹی کے تھامس شوارٹز کہتے ہیں
He will probably extol the achievements of his administration, particularly on the economy, but he will also probably mention impeachment and probably attack quite strongly the Democrats for their policy.
وہ غالباً اپنی انتظامیہ کی کامیابیوں کی تعریف کریں گے, خاص طور پر معیشت کے حوالے سے, لیکن وہ غالباً مواخذے کا ذکر بھی کریں گے اور غالباً ڈیموکریٹس پر مواخذے سے متعلق ان کی پالیسیوں پر خاصی سخت تنقید بھی کریں گے. یہ الفاظ تھے تھامس شوارٹز کے. اگر ان کی ریلیاں اس بارے میں کچھ عکاسی کرتی ہیں تو ان کے مواخذے کے مقدمے میں جو کچھ بھی ہو, امکان یہی ہے کہ وہ مسلسل خوش امیدی کا اظہار کریں گے.
This November we are going to win back the House, we are going to hold the Senate, and we are going to keep the White House.
اس نومبر کے مہینے میں ہم ایوان کو واپس جیت لیں گے, ہم سینٹ کا کنٹرول برقرار رکھیں گے اور ہم وائٹ ہاؤس کا کنٹرول برقرار رکھیں گے. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.